मंच पर उपस्थित आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी, मंचासीन सम्मानीय अतिथिगण, उपस्थित सभी वंदनीय संत समाज, उपस्थित माताओं बहनों एवं भाइयों, मैंने संचालक महोदय अपना परिचय देने से रोक दिया क्योंकि वो इतनी प्रशंसा और भावना से मैं कई बार घबराहट सी होने लग जाती है सुनने में, इसलिए मैंने कहा कि सभी लोग जानते हैं और इसलिए आवश्यकता नहीं है। इस आयु में आज एक बड़ी विशेष बात है जो गिरधर मालवीय जी ने कही है, और वो ये है कि आज की तारीख से ठीक 100 वर्ष पूर्व हरिद्वार में जो डैम कोटी नाम की जगह है, वहाँ महामना मालवीय जी ने अंग्रेजों के साथ गंगा की अविरलता में एक समझौता किया था, और यद्यपि वो समझौता गजट नोटिंग के रूप में 16 में आया, लेकिन 1914 उस समझौते के बारे में प्रस्ताव हुआ, विचार विमर्श हुआ और दस्तखत हुए, और इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा कैसे हो गया कि मोदी जी ने चुनाव लड़ने के लिए बनारस को चुना, और बनारस इसके पहले बाबा विश्वनाथ के नाम के साथ आइडेंटिफाइड था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ गंगा के कहने पे आया हूँ, यानी गंगा उस पूरे चुनाव की हवाओं में तैर रही थी सब तरफ, क्योंकि मोदी जी की वाणी गूंज रही थी। उसके बाद उन्होंने जब मंत्रालय अपना कैबिनेट का विस्तार किया तो उन्होंने गंगा का मंत्रालय बनाया, और मैं थोड़ा सा कह दूं सुनिश्चित कि उस मंत्रालय का नाम गंगा पुनरुद्धार नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी औकात थोड़ी है कि हम गंगा का उद्धार करेंगे, गंगा हमारा उद्धार करेगी कि हम गंगा का करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे मंत्रालय का नाम गंगा संरक्षण रखा है, गंगा पुनरुद्धार हमारे मंत्रालय का नहीं है, हमारे पूरे मंत्रालय का नाम है जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, इसी के नाम से मंत्रालय का गजट नोटिफिकेशन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गंगा पुनरुद्धार शब्द को बदल दिया था नोटिफिकेशन से ठीक पहले, और मुझे लग रहा है कि कुछ बातें पहली बार हुई, जैसे किसी एक गैर कांग्रेसी व्यक्ति को अपना बहुमत पहली बार आजादी के बाद प्राप्त हुआ है, अपना पूर्ण बहुमत, कुछ घटनाएं पहली बार हुई। इसी प्रकार से किसी नदी के नाम मंत्रालय का गठन विश्व में पहली हुआ है पूरे संसार में। इसके जो मुख्य पुरोधा गण हैं वो यहाँ बैठे हैं, मैं उनमें से दो तीन लोगों के नाम का उल्लेख जरूर करूंगा। एक महाना को हमने नहीं देखा, पूर्व जन्म में उनके साथी रहे हो तो रहे हो, इस जन्म में तो नहीं देखा क्योंकि 61 में पैदा हुए हैं, लेकिन उनसे कोई कनेक्टिविटी तो थी, क्योंकि गंगोत्री में जब मैं एक महीने रहने के लिए गई पट खुलने से पहले, तो गंगोत्री में एक स्थान है श्री कृष्णाश्रम जी का, जिनको महामना शायद यहाँ लाए थे ना मालवीय जी महामना, उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जिस संत को लाया गया था, और वो वस्त्र नहीं पहनते थे, हिमालय में भी वो दिगंबर रहते थे, तो वो जिस गड्ढे में रह करके तपस्या करते थे, उन्हें एक गड्ढा बनाया हुआ था, उनके जो परंपरा के शिष्य थे उन्होंने मुझे कहा कि आप उसी गड्ढे में जप करिए, और बहुत गहरे गड्ढे में मुझे बिठा देते थे वो लोग, और मैं वहां जप करती थी। मुझे नहीं मालूम था कि अब ये कनेक्शन कहाँ जाने वाला है। मैं आपको बताऊं, एक 6-7 दिन के जप के बाद मुझे अचानक लगा कि अगर भूकंप आ गया और अपने विचार आया जप पे, तो इस गड्ढे में ही समाधि हो जाएगी। मैं तुरंत निकल के बाहर आई, और उस श्री कृष्णाश्रम जी की परंपरा के जो संत अभी वहाँ गद्दी सिंह हैं, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा विचार क्यों आया, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि जितनी जप की संख्या हो गई थी इसके बाद मोक्ष का मार्ग खुलता है, और गंगा की इच्छा है कि आपको कुछ काम करना है, इसलिए उन्होंने आपको डरा दिया और यहाँ से उठा दिया, आप भयभीत हो गए। और सच में मैं इतनी डरी, मैं आपको बताऊँ, जब मैं कभी नहीं डरी कई दिनों से उस गड्ढे में जप करते हुए, बहुत गहरे में है वो गड्ढा, एक मंदिर के सामने हो, एकदम भागीरथी के तट पर। लेकिन जब गिरधर मालवीय जी सपत्नीक मुझे मिले बनारस में, तो मेरी वो यात्रा पूरी हो गई जो गंगोत्री से शुरू हुई थी और मैं महामना के साथ किसी न किसी प्रकार से उस परिवार का सदस्य अब बन गई और वो यहाँ पर बैठे हैं। इसी प्रकार से हिमालय परिवार के मुखिया इंद्रेश जी यहाँ बैठे हैं। हमने जब भी कोई गंगा अभियान किया तो इंद्रेश जी का हमको बहुत संरक्षण मिला। मंत्री बनने से पहले जो गंगा अभियान हुआ है उसमें जिन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रखे, वो आज संयोग से जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि ये भगवान कैसा विधान कर दिया है कि वह भी यहाँ पर मौजूद है। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और मंच पर जितने भी लोग मौजूद हैं और सामने भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो हमारे गंगा अभियान में किसी ना किसी प्रकार से सहयोगी रहे, हमें सशक्त करते रहे। अब गंगा का मंत्रालय बन गया है और गंगा रिवर मिशन अथॉरिटी भी गंगा संरक्षण मंत्रालय का हिस्सा हो गई है। पहले गंगा का नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी का नोटिफिकेशन हुआ और अंत में 22 सितंबर को गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी में एक नया परिवर्तन किया प्रधानमंत्री ने कि उन्होंने गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी का एक उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि वो स्वयं अध्यक्ष हैं और उस उपाध्यक्ष को उन्होंने गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी की बैठक बुलाने का अधिकार दिया, निर्णय करने का अधिकार दिया और निर्णय लागू करने का अधिकार दिया। और इस तरह से जो जल संसाधन मंत्री है वो गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी का अध्यक्ष बन गया। और फिर मैंने सबसे पहले 20 अक्टूबर को एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और केंद्र के वो विभाग जिनका गंगा से और उसकी ट्रिब्यूटरी से संबंध है उन विभागों के सचिवों की बैठक हुई, उन्होंने एक एजेंडा तय किया। और फिर 27 अक्टूबर को गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी की बैठक हुई जिसने उस एजेंडा को अप्रूव किया जिसमें पांचों राज्यों के सरकारों के प्रतिनिधि मौजूद थे और केंद्र के सभी संबंधित विभागों के मंत्रीगण उसमें मौजूद थे। मैं उस बैठक में थी, प्रधानमंत्री जी की आज्ञा से उसकी अध्यक्षता कर रही थी। और अंत में हमने गंगा की अविरलता और निर्मलता के संबंध में कुछ फैसले लिए और अब उन फैसलों को 45 दिन के अंदर हमें टेक ऑफ करना है। मैं मीडिया को क्लियर करूं, 45 दिन में फैसले क्रियान्वित नहीं होंगे, टेक ऑफ करेंगे। आप जरा भी इधर से उधर लिख देते हैं तो हमको बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, ऐसा संकट मत करिएगा और दूसरे विषय पर करिएगा, इस पे नहीं। 45 दिन में वो फैसले टेक ऑफ होंगे, यानी उठेंगे, खड़े होंगे, उनका क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। वो क्रियान्वित हो जाएंगे ऐसा नहीं है, उनका क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा। और हमने तय किया कि जिस दिन गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी की बैठक में वो सभी फैसले अप्रूव्ड होंगे उसके 45 दिन के अंदर लिए गए सारे फैसले टेक ऑफ कर जाएंगे, जिसमें कुछ के परिणाम 1.5 साल में, कुछ के परिणाम 2.5 साल में, कुछ के परिणाम 3 साल में, इस प्रकार से एक क्रम उसका बना। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठी है अविरलता की। अविरलता के लिए एक समिति बन गई और वो 15 दिसंबर तक हमको रिपोर्ट देगी। रवि चोपड़ा कमेटी, चतुर्वेदी कमेटी और आईआईटी का जो कंसोर्टियम बना है उसके जो कन्वीनर हैं उनकी जो कमेटी है उसकी जो अंतरिम रिपोर्ट है वो तीनों को अध्ययन करके पर्यावरण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और वाटर रिसोर्स मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी हमको ये प्रस्ताव देंगे कि नदी मौसम और स्थान के अनुसार कितना नदी में फ्लो रहना चाहिए। मैंने 3 चीज़ें मानी हैं जिसको मैं अंग्रेजी में बोलूं, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अभी हिंदी इतनी भयानक प्रस्तुत होते हमारे सामने कि कई बार हमें हिंदी समझने के लिए अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है अपने मंत्रालय में। इसमें आपको सच्ची बता रही हूँ, पता नहीं कौन से जमाने की हिंदी होती है वो। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि रिवर स्पेसिफिक, साइट स्पेसिफिक और रेनफॉल स्पेसिफिक, ये 3 बातों को मिला करके आप इकोलॉजिकल फ्लो बताइए कि कितना होना चाहिए। 15 दिसंबर तक वो रिपोर्ट हमको मिल जाएगी। जैसे ही 15 दिसंबर तक वो रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, इसी बीच में सैंड माइनिंग जो साइंटिफिक रूप में जरूरी है, गाद को हटाना बहुत जरूरी है, सैंड माइनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन वो साइंटिफिक होनी और रिवर फ्रेंडली होनी। तो इसलिए सैंड माइनिंग के लिए एक पृथक कमेटी है उनको हमने कहा है, उनसे मेरी बात हुई है, वो यहाँ मौजूद है, जिनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनी है, वो भी हमें अपनी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि सैंड माइनिंग का संबंध भी अभिरंता से है। और इकोलॉजिकल फ्लो की ये तीनों कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट मिल जाएगी वो हम देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। निर्मलता के बारे में आज जो मैंने देखा, एक दिन पहले मैं कानपुर में भी गई थी और आज मैं अपने विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ मैंने 80 से शुरू किया, 80 के थोड़ा पहले जहां वो पुल बना हुआ है, पेंटून जो बना हुआ है, वहां से शुरू किया और हम वरुणा तक गए, क्योंकि यही वाराणसी है जो वरुणा और 80 के बीच में। वहां की स्थितियों को देख करके, क्योंकि इसको देखने से पहले हमको इतना आत्मविश्वास चाहिए था कि हम कर सकते हैं कि नहीं, और इसे दुनिया की बहुत सारी टेक्नोलॉजी मेरे सामने प्रस्तुत हुई है, हमने उन सबका अध्ययन किया है, और उसका अध्ययन करने के बाद हमने एक दो जगह देखने का तय किया। तो हम जाने वाले हैं एक दो जगह पे, विदेश में टीम भी भेजेंगे, लेकिन मैं साबरमती देखने गई खुद, गुजरात में मोदी जी ने जो साबरमती का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया है, जिसमें उनने नाले रोके, केमिकल डिस्चार्ज रोका, नदी इकोलॉजिकल फ्लो छोड़ा और ब्यूटिफिकेशन किया और नदी के अपने रूप को बनाए रखा और उनकी पैकेजिंग की, उसको जो मैंने देखा है, उसके बाद मुझे लगा मैं वहां गई और पूरा दिन वहां पर रही अधिकारियों के साथ, और जिनने उसका पूरा कॉन्सेप्ट बनाया था उनको मैं दिल्ली लाई और अपने अधिकारियों के साथ उनको बिठाया, और अब मैं गंगोत्री से गंगा सागर तक जितने बड़े शहर हैं उनके जो नगर के नगर आयुक्त होते हैं उन सबको मैं बुलवा रही हूँ कि उनके सामने एक बार साबरमती का प्रेजेंटेशन करो, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कैसे होना। तो मुझे लग रहा है कि साबरमती अगर ज्यों की त्यों कहीं उतारी जा सकती है, तो वारुणी और 80 का जो बीच का मैंने स्थान देखा, आज सारे अधिकारी मुझसे एक मत थे कि इस स्थान पर साबरमती का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जिसको हम RDF कहते हैं, वो ज्यों का त्यों उतारा जा सकता है, और हमने तय कर लिया है कि ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हम करेंगे और इसकी मान्यताओं का सम्मान करते हुए करेंगे, जिसमें निर्मलता के जितने भी आयाम होते हैं उनको हम सुनिश्चित करेंगे। बोलने में कई बार मेरे से भूल हो जाती है, इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि हमारे पत्रकार बंधु उत्सुक भी हैं, वो हमारे सहयोगी भी हैं। गंगा एक ऐसा तत्व है जिसपे पूरे विश्व की बिरादरी एक है, और मीडिया के चाहे प्रिंट हो चाहे विजुअल हो, सब गंगा को लेकर चिंतित है, सबने खबरें लिखी हैं, संपादकीय लिखे हैं, जितने भी टेलीविजन चैनल हैं सबने कोई ना कोई कार्यक्रम बनाया है, और खूबी ये रही कि एक कार्यक्रम को दूसरे से रिपीट नहीं किया, ये सबके एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग रहे, और पूरी दुनिया के लोग भी इस मामले को लेकर इकट्ठे हुए, अब वो जानने के लिए उत्सुक है कि अब क्या होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी, एक 1985 की एक रिट है, उस रिट पे अचानक जो जल्दी जल्दी सुनवाई शुरू हुई है, अब उसको लेके ये भ्रम हो जाता है कि कोर्ट शायद हमें डांट रहा है, लेकिन जब मैं कोर्ट का ऑर्डर देती हूँ तो उसमें वैसा नहीं होता है। 85 से लेके अभी तक की समीक्षा हो रही होती है, जिसमें से अभी हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा ही नहीं हुई है, क्योंकि हमने कार्यक्रम शुरू किए ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 27 अक्टूबर को तो अप्रूव हुई है गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की बैठक में, हमें क्या कार्यक्रम टेक ऑफ करने हैं ये अप्रूव्ड हुए हैं अभी, और हमने मान लिया कोर्ट के सामने वो प्रस्तुत कर दिया, और जब मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा तो मैं गंगरे गई, क्योंकि कोर्ट ने हमको फटकारा नहीं दुलारा है, और हमको कहा है कि हमारी जरूरत जहां पड़े हमें बताओ, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे ताकि तुम आराम से गंगा का काम कर सको। कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है। इसलिए जैसे पूरे विश्व की बिरादरी गंगा के मामले में साथ है, इसी प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय भी गंगा अविरल और निर्मल हो इस मामले में हमारा संरक्षण करती है, हमें आशीर्वाद देती है। इसमें जो बात एक दिक्कत खड़ी होती है, जल्दी करो, क्यों नहीं हो रहा, अभी दिखाओ, अब क्या करूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बोलने पे ही ज्यादा अच्छी होती हैं। अब अगर मैं जल्दी करूं तो क्या होना, तो हमारे अधिकारी कहते हैं CVC को कौन फेस करेगा, फिर CBI में FIR हो गई तो कौन फेस करेगा, इसलिए प्रोसीजर से चलना। तो मैंने कहा ठीक है, प्रोसीजर से चलो, शॉर्टकट्स निकालो, फ्लॉलेस शॉर्टकट्स निकालो, गंगा के साथ मजाक मत करो, और जो हो वो स्थिर और स्थायी होना चाहिए, जो भी हो वो स्थिर और स्थायी होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा धैर्य का और समय का सब लोग वरदान दीजिएगा, एक बात मैं कह सकती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मैंने जो मांगा वो दिया है मुझे गंगा का काम करने के लिए। मेरे को तो ये लग रहा था कि मैं चांद मांगूंगी तो चांद भी ला के दिया जाएगा, ठीक है तुम गंगा का काम ठीक से करो, आवाज आना बच गया कि तुम तो बस इस काम को ठीक से करो। प्रधानमंत्री कार्यालय का ऐसा सहयोग मैंने कभी देखा नहीं। मेरे मुंह से बात निकलती है और बात पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिसमें एक बारिश की बौछार में ही वो काम खत्म हो जाए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि एक ओवरफ्लो में वो काम खत्म हो जाए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें कहीं भी नाली टूटी हो बहने लग जाए। जैसा माननीय गिरधर मालवीय जी यहाँ पर कह रहे थे, हम उस बात को पकड़े हुए हैं कि गंगा में ट्रीटेड और अनट्रीटेड दोनों तरह का पानी नहीं जाने देना, आप उसको कहीं ले जाइए। और इसलिए हमने इंडस्ट्रीज को भी कहा है कि आप बताइए आपको अपने प्रदूषण को कैसे रोकना। राज्यों के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बैठक हो गई है, राष्ट्रीय जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसकी बैठक हो गई है। हमने कहा कि आप बताइए प्रदूषण को गंगा में जाने से कैसे रोकना और उसमें हमसे क्या असिस्टेंस चाहिए वो हम देंगे, लेकिन आपको रोकना पड़ेगा। और मैंने उद्योगों के साथ में ये भी कहा है कि डिलीवरी रूम के बाहर आके जब डॉक्टर कहता है कि माँ क्रिटिकल हो गई है तो माँ और बेटे में से कोई एक बचेगा तो बताओ कौन बचेगा, तो परिवार के लोग अपनी मनोदशा के अनुसार तय करते हैं। तो मेरी मनोदशा यह है कि मैं बच्चे को मर जाने दूंगी लेकिन माँ को नहीं मरने दूंगी, ये तय कर लूंगी। इसलिए इंडस्ट्री से बहुत साफ बात हो गई है और कानपुर की ट्रेनरी जो स्लॉटर हाउस के लोगों ने कहा है कि हम पूरी तरह से गंगा की निर्मलता के लिए आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। उन्होंने हमें अपनी अड़चन बताई है, उस अड़चन को सुनने के लिए हमने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को कहा है। और राज्यों की सरकारों ने कम से कम अभी तक उत्तराखंड से लेकर गंगा सागर तक जितनी सरकारें हैं पांच राज्यों की, उन्होंने गंगा रिवर बेसिन की अथॉरिटी में बैठक में मिनट्स में लिखा हुआ, उन्होंने कहा है कि गंगा के बारे में आप जो निर्णय लेंगे हम आपका साथ देंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। इसलिए अब एक प्रकार से मैं कह सकती हूँ कि ये जो यूनिफॉर्मिटी और यूनिट ये माँ गंगा ने ही निर्मित की है, हमने नहीं की है, हम तो सामने आ गए। इसके पीछे तो बहुत बड़ी तपस्या है और बहुत बड़े आशीर्वाद हैं, और जिनकी तपस्या है और जिनके आशीर्वाद हैं, इसमें एक बात और जो आप में मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को वाराणसी के लोगों से गंगा पर बहुत लंबी बात करनी है, संक्षेप में बहुत मुश्किल पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक बात आई कि इसको जन आंदोलन बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी पार्लियामेंट में, अपना भाषण जब उन्होंने अपना पहला भाषण दिया तो उन्होंने कहा था कि विकास को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। विकास कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि विकास हो रहा है तो लोग सिर्फ विकास का लाभ ना लें बल्कि विकास के निर्माण में भी उनकी भूमिका होनी चाहिए। इससे उनको लगता है कि हमारी अपनी सृष्टि है, हमारी अपनी रचना है, और इसलिए विकास को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। विकास को जन आंदोलन बनाने में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई तथ्य सामने आने वाला है तो वो गंगा अभियान का सामने आने वाला है, क्योंकि इसमें पूरी विश्व की बिरादरी है जो गंगा अभियान में कुछ ना कुछ कर चढ़ती है। लोग दान देना चाहते हैं, लोग काम करना चाहते हैं, और इसलिए जो बातें मैंने बहुत संक्षेप में आपको कह दी अविरलता और निर्मलता के संबंध में, वो बातें बहुत लंबी हैं और मुझे तो एक डेढ़ घंटा तक लगता आपको पूरा एक एक, क्योंकि 19 बिंदु हमने तैयार किए और वो 19 बिंदु एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी में तय हुए, फिर गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की सभी राज्यों की बैठक में उनका अप्रूवल हुआ और अब उन्हीं के आधार पर कार्यक्रम बन गए। उन कार्यक्रमों में एक बात जो दो बातें अभी आई थी, एक तो ये आई थी कि 80 की बात आ रही थी तो मैं उसका नाम शॉर्ट में मुझे मालूम था, फुल फॉर्म उसका नहीं मालूम था, तो मैंने अभी मोबाइल से बात करके अपने अधिकारी से उसका पूरा नाम पूछा है। जो जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके लिए हमने गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ने 300 करोड़ बजट एलोकेट किया है इसके लिए कि गंगा और उसकी सहायक नदियां कहाँ थी, कहाँ लुप्त हो गई, वो कहाँ है, आज उनकी पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन की क्या है, और इसके लिए ये जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये पूरी इंफॉर्मेशन हमको देगा, क्योंकि कई नदियां बिल्कुल लुप्त हो गई हैं, कई नदियां हैं लेकिन वो नहीं होने के बराबर हो गई हैं, और स्वयं गंगा की भूमि कितनी है, यानी गंगा और जमुना जैसी उसकी सहयोगी नदियों की भूमि मूलभूत में उसकी भूमि कितनी है, ये पूरे सिस्टम के द्वारा हमारे पास लगभग 2-3 साल में हमारे पास आ जाएगा। और जैसे ही ये सिस्टम के द्वारा ये इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, इसके बाद में हम वहाँ के वाटर टेबल को ऊंचा उठा सकेंगे और कई नदियों को हम सर्च कर सकेंगे, और इससे आध्यात्मिक लाभ तो होंगे ही, भौतिक और लौकिक लाभ भी होंगे। इसलिए अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना होने वाली है, जब गंगा की असली भूमि आपको पता लगेगी, जब जमुना की असली भूमि आपको पता लगेगी, जब असी कहां से आई वो कहां तक गई ये पता लगेगा, वरुणा कहां से आई वो कहां तक गई ये आपको पता लगेगा, और जब पूरी दुनिया को पता लगेगा, भारत को पता लगेगा कि गंगा रिवर बेसिन की कितनी नदियां हैं और वो नदियां कहां से चली और कहां विलुप्त हो गई और उसका जो स्वरूप पता लगेगा। और इसके लिए आज मैं एक बात कह रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको एक बात कही है कि देखो मैं अपने बनारस लोकसभा सीट का सांसद हूँ, तो मैं सांसद के नाते खुद अपनी सीट की सेवा करूंगा। तुम लोग ये मत करना कि मेरी सीट है इसलिए वहाँ कोई विशेष काम जा करके करना है, मैं खुद ध्यान रखूंगा। और एक सांसद के नाते, एक सांसद जैसे अपनी सीट का ध्यान रखता है, मैं वैसे रखूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि कुछ चीजें तो हमने पहले ही तय कर रखी थी जब आपने चुनाव नहीं लड़ा था, तो वो तो हमें करनी ही पड़ेगी, जिसमें से एक मेरे मन की बात थी और आज उसी के लिए मैं दो तीन जगह पर गई भी थी। और वो बात ये थी कि एक हमारा CWPRS है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, जो पुणे के पास खड़क वासरा में है, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो पानी और उस पर मिलने वाले पानों की रिसर्च कर रहा है। मेरे मन में था कि गंगा के बीच में बनारस है और वहां पर इस इंस्टीट्यूट की दूसरी शाखा और होनी चाहिए, और इसलिए बनारस में उसकी एक शाखा यहाँ पर होगी। यहाँ हम राज्य सरकार से बात करेंगे कि वो हमें इसके लिए भूमि प्रदान करे, और वो एक प्रकार से विश्वविद्यालय होगा, नदियों का विश्वविद्यालय होगा, जल का विश्वविद्यालय होगा। और मैंने उनको कहा है, इंस्टीट्यूट के लोगों को, उसमें बहुत अच्छे हीरे, हमें ऐसे ऐसे हीरे मिले हैं। मैं आपको बताऊँ, आपको यद्यपि मुझे यहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं करनी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को क्या दिया। देश में नदियाँ पहले से हैं, देश की धरती पहले से उर्वरा है, देश के लोग पहले से ही बुद्धिमान हैं, देश के लोग पहले से ही शूरवीर हैं, देश के लोग पहले से ही परिश्रमी हैं, देश के लोग पहले से ही त्यागी तपस्वी हैं, देश में सब है, देश में पहले से ही हीरे हैं, तांबा है, चांदी है, लोहा है, सब है। एक चीज थी जिसकी कमी थी, वो था आत्मसम्मान, आत्मबल, आत्मसम्मान। अपने आप में विश्वास नहीं आता, हमें लगता था हम नहीं कर पाएंगे, हमें किसी और से पूछना पड़ेगा कि एम आई राइट, ये हमको लगता था। हम मोदी जी ने हमारे दिल में ये बिठाया कि यस वी विल, यस वी कैन, आपको उनका कि हम करेंगे क्योंकि हम कर सकते हैं। अपने इतने विंग हैं हमारे मंत्रालय के, उसमें देखा कैसे कैसे इंजीनियर, कैसे कैसे वैज्ञानिक हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन वो डेस्क से बंधे हुए हैं, वो इधर उधर देखते नहीं हैं। तोते को आप पिंजरे से निकाल दो तो थोड़ी देर पिंजरे का ही बैठता है, क्योंकि उसको वहीं सुकून लगता है, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता उससे। फिर उसको कहना पड़ता है शाबाश, सूट फैलाओ, उड़ो, देखो कितना बड़ा आसमान है। फिर वो कहता नहीं नहीं मामा, ऊपर कौवे होंगे। कहता है कि नहीं बाबा, कौवों से तुम ज़्यादा ऊँची उड़ान भर सकते हो, भरो भरो में। मैं कभी इस पर किताब लिखूंगी कि जब मुझे एक मंत्रालय की रचना करने के लिए मेरे प्रधानमंत्री ने कहा और मुझे कहा कि शाबाश, यस यू कैन एंड यू विल, मैं तो डर गई। मैंने अपने पीएम को कहा कि मैं स्कूल में नहीं गई हूँ, आपको पता है मैं स्कूल में नहीं गई हूँ, मेरी होम लर्निंग हुई है पूरी की पूरी। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो स्कूल ही नहीं गई, पर आपने मुझे वो काम जिसमें साइंस है और टेक्नोलॉजी है, उनने कहा यस यू कैन एंड यू विल, करो, ठोक के करो, डरो मत, आत्मविश्वास के साथ में करो। ये आत्मविश्वास है जिसके कारण कि धीरे धीरे हम इस जकड़न से बाहर आ रहे हैं कि हमें सिर्फ वही काम करना है जो हमारे लिए तय हो चुका है। नहीं, हमारी बुद्धि की सीमाएं अनंत है, क्योंकि ये सूर्योदय का देश है, सूर्य की पहली किरण इस देश की धरती पर पड़ती है, वह सूर्य बुद्धि का देवता है, और इसलिए ये बुद्धिमानों का देश है। और जैसे सूर्य का प्रकाश कई देशों को आर पार होकर के भी पड़ता है, इसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति एक साथ कई असंभव कार्यों को संभव कर सकता है। इसी आत्मविश्वास के साथ हम आशीर्वाद मांग रही हूँ आप लोगों का। संत जन जब उधर से चले आ रहे थे, एक झुंड चला आ रहा था संत जनों का, तो मुझे तो लगा था बहुत पुराने समय में पीछे चले गए। प्रधानमंत्री ने एक काम सौंपा है, सारी व्यवस्थाओं को करने में 10-12 साल लगेगा, लेकिन सारी व्यवस्थाएं 3 साल में स्थापित जरूर हो जाएंगी। 45 दिन के अंदर उसका टेक ऑफ हो जाएगा। एक आध बात थोड़ी इधर उधर हो जाती है, वो मैं क्लियर कर दूं, अब आगे से नहीं बोलूंगी। मैं शर्मिंदा भी हुई कि मैंने बोला, पत्रकार वार्ता हो रही थी तो उनने, एक ने पूछा कि अस्थि विसर्जन होना चाहिए कि नहीं, तो मुझे हरिद्वार एक कारण आ गया कि कोई मेरे सामने अस्थियां फेंका और उस पर लात रखते हुए लोग आगे बढ़ गए नदी में, क्योंकि उनने अस्थि किनारे पे फेंक दी। तो मुझे वो प्रसंग याद आया तो मैंने सहज में कह दिया कि ठहरे में हो तो ठीक है। फिर मुझे लगा गड़बड़ हो गई और उसी का परिणाम निकला कि मेरे पुतले आज तक जल रही है, जबकि मैंने ये कहा ही नहीं कि अस्थि विसर्जन नहीं रुकना चाहिए। मुझे तो वो दृश्य याद आ गया, मैंने तो इतना कहा कि थोड़ा गहरे जल में। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं बाबा ये अपन को नहीं करना अस्थि विसर्जन, चिता की डिजाइन और इसके साथ ही साथ में कौन सी चिता, वो बिजली वाली की लकड़ी वाली, ये सब शंकराचार्य जी जो तय कर देंगे हम उसको मानेंगे, हमने तय किया। मेरी बहुत जल्दी चिट्ठी जाने वाली है सभी अखाड़ों को और सभी पीठों को, ये तीन बातें आप तय कर दीजिए, क्योंकि इसके इसका हार है वो सिर्फ चारों पीठों के शंकराचार्यों को और अखाड़ों के प्रमुख को ही हो सकता है। इसकी किसी की भी औकात नहीं है कि इसके बारे में कोई बात तय कर सके, क्योंकि परंपराओं अन्यताओं से जुड़ी हुई बातें हैं, इसमें सरकार की कोई भूमिका भी नहीं हो सकती, सिर्फ संतों की भूमिका हो सकती है और यही हमने उसका एक रास्ता निकाला है। इसलिए वो भूल बस मुँह से निकल गया था कि थोड़ा गहरे में डाले तो ठीक रहेगा, लेकिन अब भाई लोगों को या तो जगह की कमी रही होगी, क्योंकि नीचे तो पूरा डिटेल था कि ऐसा अस्थि विसर्जन करो, तो जो पुतले जले मेरे, और उसमें आया कि जब तक सरकार फैसला नहीं पलटेगी तब तक इनका क्या बोलते हैं पुतला दहन होता ही रहेगा। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि दहन हो रहा था हरिद्वार की तरफ, हम मेरी दिल्ली की तरफ, फिर भी मेरे को लगा कि कौन सा फैसला पलटू, क्योंकि फैसला तो कोई नहीं ना, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि अस्थि विसर्जन नहीं रुकती। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं मोडिफिकेशन भी नहीं बोलना, कुछ बोलना ही नहीं है, इस बारे में बोलना नहीं चाहिए, गलत हो गया है। तो हम उस पर शांत हो गए हैं और जो हमारे जो परंपरागत मान्यताओं को जो तय करते हैं वो जो तय कर देंगे उसी को स्वीकार करके उस व्यवस्था को लागू करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी कठिनाइयां हैं। बड़ी कठिनाई तो निर्मलता और अविरलता की है और जिसको पूरा करने में मोदी जी की सरकार पूरी दम लगा रही है, अपने आप को पूरा झोंके हुए है। और मैं तो फिर कहूंगी कि भागीरथ के बाद मोदी जी का जन्म हुआ है शायद गंगा के कार्य के लिए, और वो जरूर पूरा होगा। मैं माध्यम के साथ मंच पर विराजमान सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और बार बार आपसे इंटरेक्ट करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। बोलिए गंगा मैया की
जय। उतरने लगेंगे ना, उतरने लगेंगे, उतरने लगेंगे। बेसिक का डेट खत्म हो गया।